एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया।
जी हाँ, और वो किताब है एरिक हॉब्सबॉम की बहुत ही मशहूर रचना द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1789-1848। और ये सच में सिर्फ तारीखों या घटनाओं की लिस्ट नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किताब दरअसल एक कोशिश है समझने की कि हमारी जो आज की दुनिया है उसकी जड़ें आखिर कहाँ हैं।
बिल्कुल, और ये दौर 1789 से 1848, महज 60 साल है ना। लेकिन ऐसा लगता है जैसे इतिहास ने अचानक मतलब रफ्तार पकड़ लियो।
एकदम, कैसे वो पुरानी दुनिया जो ज्यादातर खेती बाड़ी पर टिकी थी, राजशाही थी, वो देखते देखते फैक्ट्रियों वाली, शहरों वाली और बिल्कुल नए विचारों वाली दुनिया बन गई।
हाँ, और ये किताब इसी का विश्लेषण करती है ना?
बिल्कुल, और देखिए ये आज भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि जो ताकतें उस जमाने में उभरी, जैसे पूंजीवाद है, राष्ट्रवाद है, समाजवाद, ये सब आज भी हमारी जिंदगी को, हमारी राजनीति को, अर्थव्यवस्था को मतलब चला रही हैं।
सही बात है। तो ये किताब एक तरह से हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया बनी कैसे।
एकदम, इसकी बनावट को समझने में मदद करती है।
तो चलिए इस समझ की शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिन्होंने ये नजरिया दिया, एरिक हॉब्सबॉम। कौन थे ये और क्यों उनका तरीका इतना खास माना जाता है?
देखिए, एरिक हॉब्सबॉम 1917-2012 20वीं सदी के मतलब बहुत ही प्रभावशाली ब्रिटिश इतिहासकारों में गिने जाते हैं। कैम्ब्रिज से पढ़े और अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी के बर्कबेक कॉलेज में पढ़ाया।
अच्छा,
और उनकी पहचान सिर्फ एक बड़े इतिहासकार के तौर पर ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचारक के तौर पर भी है जिसने, कह सकते हैं, आम लोगों के लिए इतिहास को सुलभ बनाया।
हाँ, और उनकी एक और पहचान है उनका मार्क्सवादी नजरिया। वो आजीवन मार्क्सवादी रहे, लेकिन सुना है किसी कट्टरपंथी की तरह नहीं।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक आलोचनात्मक मार्क्सवादी थे और इस नजरिए का उनके लेखन पर बहुत गहरा असर पड़ा।
कैसे, मतलब क्या फर्क पड़ा इससे?
फर्क ये पड़ा कि इसने उन्हें इतिहास को सिर्फ राजा महाराजाओं या संधियों और युद्धों तक सीमित रखने के बजाय बड़ी आर्थिक ताकतों, समाज के ढांचे और सबसे अहम, जिसे वो वर्ब संघर्ष कहते थे, उसके चश्मे से देखने में मदद की।
अच्छा, यानी वो नीचे तक देखते थे।
हाँ, वो हमेशा पूछते थे कि जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उनका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, किसानों पर, मजदूरों पर। वो जिसे कहते थे हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से लिखा गया इतिहास।
दिलचस्प। तो उनका ध्यान सिर्फ बड़ी घटनाओं पर नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की बदलती जिंदगी पर भी था। अच्छा, उनकी एक किताबों की मशहूर श्रृंखला भी है ना, शायद ये उसी की पहली कड़ी है।
हाँ बिल्कुल, द एज ऑफ रेवोल्यूशन उनकी बहुत प्रसिद्ध चार किताबों की सीरीज की पहली किताब है। इसके बाद आई द एज ऑफ कैपिटल, फिर द एज ऑफ एम्पायर और आखिर में द एज ऑफ एक्सट्रीम्स। और इसी पहली किताब ने, एज ऑफ रेवोल्यूशन ने, उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, कला, विज्ञान, इन सबको जोड़कर एक बड़ी, एक मुकम्मल तस्वीर पेश कर पाते थे।
कमाल है। तो आप आते हैं इसी किताब पर, द एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसका मतलब मूल विचार क्या है? क्या ये सिर्फ दो क्रांतियों की कहानी है या उससे कुछ ज्यादा है?
देखिए, ये दो क्रांतियों की कहानी तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा है। हॉब्सबॉम का जो केंद्रीय तर्क है वो है दोहरी क्रांति का, ड्यूअल रेवोल्यूशन।
दोहरी क्रांति।
हाँ, उनका कहना है कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, जो मुख्य रूप से आर्थिक थी, और फ्रांस में जो राजनीतिक क्रांति हुई, ये दो अलग अलग चीजें नहीं थी।
अच्छा,
कि दुनिया का मतलब नक्शा ही बदल दिया।
वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। यानी एक तरफ फैक्ट्रियां, मशीनें बदल रही थीं कि लोग कैसे काम करेंगे, कैसे कमाएंगे।
बिल्कुल।
और दूसरी तरफ फ्रांस में ये विचार बदल रहे थे कि समाज कैसा होना चाहिए, अधिकार किसके पास होने चाहिए।
एकदम सही। और हॉब्सबॉम यही दिखाते हैं कि इन दोनों क्रांतियों ने मिलकर वो संस्थाएं बनाई जैसे आज के हमारे नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्र राज्य।
हाँ।
वो विचारधाराएं तैयार की जैसे लिबरलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म, उदारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, और वो सामाजिक वर्ब पैदा किए, खासकर जो नया मध्य वर्ग था और औद्योगिक मजदूर वर्ग जो आज तक हमारी दुनिया को मतलब आकार दे रहे हैं।
तो ये किताब सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन गहरी बुनियादी ताकतों का विश्लेषण है जिन्होंने हमारे आधुनिक युग की नींव रखी।
और किताब की बनावट भी शायद इसी विचार को ध्यान में रखकर की गई है। सुना, इसके दो हिस्से हैं, एक विकास और दूसरा परिणाम।
जी हाँ, पहला हिस्सा जिससे वो डेवलपमेंट्स कहते हैं वो घटनाओं पर ज्यादा केंद्रित है, जैसे 1780 के दशक की दुनिया आखिर थी कैसी, फिर औद्योगिक क्रांति कैसे फैली, फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या मोड़ आए, नेपोलियन के युद्धों ने क्या बदला, और फिर 1848 तक वो क्रांति की लहरें कैसे उठती रहीं, ये सब पहले हिस्से में है।
और दूसरा हिस्सा परिणाम, उसमें क्या है?
दूसरा हिस्सा रिजल्ट्स, वो इन सारे बदलावों के नतीजों का विश्लेषण करता है, जैसे जमीन का मालिकाना हक कैसे बदला, पूरी दुनिया में एक नई औद्योगिक व्यवस्था कैसे बन गई, वो नया मध्य वर्ग जिसे बुर्जुआ कहते हैं वो कैसे उभरा और कैसे ताकतवर हुआ। और साथ ही वो जो मेहनतकश गरीब थे यानी नया औद्योगिक मजदूर वर्ग, वो कैसे पैदा हुआ, धर्म की जगह नई विचारधाराओं ने कैसे ले ली, कला और विज्ञान पर क्या असर पड़ा, ये सारे गहरे विश्लेषण दूसरे हिस्से में है।
तो ये किताब एक तरह से हमें उस प्रयोगशाला में ले जाती है जहां हमारी आज की दुनिया के मतलब जरूरी तत्व तैयार हो रहे थे?
बिल्कुल कह सकते हैं।
चलिए इन बदलावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब का पहला हिस्सा विकास 1780 के दशक की दुनिया से शुरू होता है। वो दुनिया आज से कितनी अलग थी?
ओह, बहुत ज्यादा अलग। हॉब्सबॉम बताते हैं कि दुनिया ज्यादातर ग्रामीण थी। सोचिए, ज्यादातर लोग खेती करते थे या छोटे मोटे दस्तकार थे। जिंदगी बहुत धीमी थी, स्थानीय थी।
हाँ।
समाज में ऊंच नीच का बहुत बोलबाला था। राजा थे, जमींदार थे, पादरी थे, उनका दबदबा था। लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि सतह के नीचे बदलाव के संकेत मिलने शुरू हो गए थे, जैसे व्यापार बढ़ रहा था, खासकर औपनिवेशिक व्यापार। नए विचार फैल रहे थे, एनलाइटनमेंट या प्रबोधन के।
हाँ, तर्कवाद वगैरह।
बिल्कुल, जनसंख्या भी बढ़ रही थी, तो एक तरह से जमीन तैयार हो रही थी बड़े बदलावों के लिए।
और फिर आया पहला बड़ा धमाका, औद्योगिक क्रांति, जिसका केंद्र ब्रिटेन था। हॉब्सबॉम इसे सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं मानते, बल्कि एक क्रांतिकारी बदलाव क्यों कहते हैं?
क्योंकि इसने सिर्फ उत्पादन का तरीका नहीं बदला, इसने समाज का पूरा ताना बाना ही बदल दिया। सूती कपड़ा उद्योग इसमें सबसे आगे था। नई मशीनें आईं, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, इनसे उत्पादन मतलब कई गुना बढ़ गया। फिर फैक्ट्री सिस्टम आया, इसने काम का एक नया अनुशासन पैदा किया, शहरों का एक नया रूप बनाया जो अक्सर काफी बदसूरत भी होता था, और सबसे अहम बात, इसने दो नए वर्ग पैदा किए, या कहें कि उन्हें ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित किया।
कौन से दो वर्ग?
एक तरफ पूंजीपति यानी फैक्ट्री के मालिक, जिनके पास उत्पादन के साधन थे, और दूसरी तरफ वो मजदूर जो अपनी मेहनत बेचकर मजदूरी पर जीने को मजबूर था, पर तकनीकी रूप से स्वतंत्र था। ये जो नया रिश्ता बना मालिक और मजदूर के बीच, यही आधुनिक पूंजीवाद का आधार बना।
समझ गया। और फिर दूसरा धमाका, फ्रांसीसी क्रांति, ये औद्योगिक क्रांति से कैसे अलग थी और इसका असर इतना गहरा क्यों माना जाता है?
ये मुख्य रूप से एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति थी। हॉब्सबॉम इस पर बहुत जोर देती हैं कि ये अमेरिकी क्रांति से कहीं ज्यादा उग्र थी, कहीं ज्यादा रेडिकल थी।
अच्छा, कैसे?
क्योंकि इसने सिर्फ राजा को नहीं हटाया, इसने सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था को, कुलीन वर्ग के जो जनजात विशेषाधिकार थे उनको जड़ से उखाड़ फेंका। इसने नागरिक की अवधारणा दी, व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन।
हाँ, वो तो बहुत मशहूर है।
बिल्कुल, इसके अलग अलग चरण थे। शुरुआत थोड़ी उदार थी, फिर कट्टरपंथी जैकोबिन दौर आया, आतंक का राज भी देखा, और फिर नेपोलियन का शासन आया। हर चरण ने दुनिया को नए राजनीतिक विचार और मॉडल दिए, और इसके नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तो पूरी दुनिया में गूंजे।
और इन क्रांतियों का एक नतीजा ये भी हुआ कि युद्ध शुरू हो गए। 1792 से 1815 तक यूरोप तो लगभग लगातार लड़ता ही रहा। क्या ये सिर्फ फ्रांस और बाकी यूरोप के बीच की लड़ाई थी?
हॉब्सबॉम कहते हैं नहीं, ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सामाजिक व्यवस्थाओं की लड़ाई थी। एक तरफ पुरानी राजशाही सामंती व्यवस्था, और दूसरी तरफ ये नई क्रांतिकारी व्यवस्था।
अच्छा, विचारों की लड़ाई।
हाँ बिल्कुल, फ्रांसीसी सेना सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रही थी, वो विचारों से भी लैस थी। और नेपोलियन के युद्धों ने तो यूरोप का नक्शा ही बदल दिया, पुरानी व्यवस्थाओं को कमजोर किया और जहां जहां वो गए फ्रांसीसी कानून प्रशासनिक तरीके फैलाए, तो अनजाने में ही सही उसने यूरोप के आधुनिकीकरण को तेज कर दिया।
फिर 1815 में नेपोलियन हार गया, वियना में कांग्रेस हुई, शांति स्थापित करने की कोशिश हुई। क्या ये कोशिश कामयाब रही, पुरानी व्यवस्था लौट आई?
देखिए, ऊपरी तौर पर तो हाँ, कोशिश यही थी कि पुरानी राजशाहियों को फिर से गद्दी पर बिठाया जाए, एक शक्ति संतुलन बनाया जाए ताकि फिर कोई एक देश इतना ताकतवर न हो जाए। लेकिन हॉब्सबॉम तर्क देती हैं कि ये शांति बहुत नाजुक थी, सतही थी।
क्यों?
क्योंकि औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने जिन ताकतों को जगा दिया था, जैसे उदारवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, उन्हें अब दबाया नहीं जा सकता था। इसीलिए तो 1815 के बाद भी क्रांति की लहरें उठती रहीं।
हाँ, आपने जिक्र किया था।
बिल्कुल, 1820 के दशक में भूमध्य सागर के आसपास हुई, फिर 1830 के दशक में पश्चिमी यूरोप में, फ्रांस में फिर क्रांति हुई, और फिर 1848 में तो जैसे पूरे यूरोप में आग लग गई,
जिसे राष्ट्रों का वसंत भी कहते हैं।
हाँ, स्प्रिंग टाइम ऑफ द पीपल्स। ये सारी लहरें दिखाती हैं कि वो क्रांति का युग 1789 में शुरू होकर 1848 तक लगातार चलता रहा, वो बदलाव की प्रक्रिया रुकी नहीं थी।
ये तो हुई घटनाओं की कहानी, अब आते हैं परिणामों पर, किताब के दूसरे हिस्से पर। एक बड़ा नतीजा जिसका आपने जिक्र किया वो था राष्ट्रवाद का उदय। ये विचार कैसे पैदा हुआ और इतना ताकतवर कैसे बन गया?
हॉब्सबॉम के अनुसार ये इसी युग की देन है। इसके दो मुख्य स्रोत थे, एक तो फ्रांसीसी क्रांति का वो विचार कि सत्ता राजा में नहीं बल्कि राष्ट्र यानी कि जनता में है जो संप्रभु है। और दूसरा स्रोत था रोमांटिक आंदोलन, जिसने लोक संस्कृति, लोक भाषा, साझा इतिहास, इन चीजों पर बहुत जोर दिया। तो इन दोनों से मिलकर बना आधुनिक राष्ट्रवाद का विचार।
शुरुआत में कैसा था?
शुरुआत में ये ज्यादातर पढ़े लिखे मध्य वर्ग का उदारवादी विचार था, लेकिन धीरे धीरे ये एक जबरदस्त राजनैतिक ताकत बन गया। इसने नए देश बनाने में मदद की, जैसे बाद में हम जर्मनी और इटली का एकीकरण देखते हैं, और पुराने साम्राज्यों जैसे ऑस्ट्रियन या ऑटोमन साम्राज्य, उनको तोड़ने वाली शक्ति भी बना।
हाँ, भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम में भी राष्ट्रवाद की यही ताकत हम देख सकते हैं।
बिल्कुल, ये उसी वैश्विक लहर का हिस्सा था।
अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? जमीन और उद्योगों का क्या हुआ इस दौर में?
जमीन के साथ लोगों का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। पुरानी जो सामंती बंदिशें थीं वो टूटी, जमीन अब एक खरीदी बेची जा सकने वाली चीज बन गई, एक कमोडिटी।
अच्छा।
इससे बड़े पैमाने पर खेती संभव हुई, उत्पादकता बढ़ी, लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि लाखों किसान बेजमीन हो गए, उन्हें काम की तलाश में शहरों की तरफ भागना पड़ा जहाँ फैक्ट्रियां थीं।
और उद्योग, वो सिर्फ ब्रिटेन में रहा या फैला भी?
औद्योगिकरण ब्रिटेन से निकलकर यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी के कुछ इलाके और अमेरिका में भी फैला, लेकिन ब्रिटेन फिर भी दुनिया का कारखाना बना रहा।
अच्छा, मतलब लीड उसी के पास रही।
हाँ, काफी समय तक। और इससे एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी, कुछ देश औद्योगिक केंद्र बन गए और बाकी दुनिया ज्यादातर कच्चे माल सप्लाई करने वाली या फिर इन औद्योगिक देशों के सामानों के लिए बाजार बनकर रह गई। ये जो श्रम का वैश्विक विभाजन हुआ, इसका असर आज तक दिखता है।
सही कहा। और समाज पर? आपने दो नए वर्गों का जिक्र किया था, उनके बारे में थोड़ा और बताइए।
हाँ, ये शायद सबसे अहम सामाजिक परिणाम था। एक तरफ था नया आत्मविश्वासी मध्यम वर्ग, जिसे हॉब्सबॉम बुर्जुआ कहते हैं। ये वो लोग थे, व्यापारी, उद्योगपति, प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता से समाज में अपनी जगह बनाई थी।
तो जन्म का महत्व कम हो रहा था?
बिल्कुल, पुराना सिद्धांत था कि आपकी हैसियत जन्म से तय होती है। नया सिद्धांत आया, करियर ओपन टू टैलेंट, यानी प्रतिभा के लिए रास्ते खुले हैं। इसी वर्ग ने उदारवादी विचारों को सबसे ज्यादा अपनाया और आगे बढ़ाया।
और सिक्के का दूसरा पहलू,
वो था औद्योगिक मजदूर वर्ग, जिसे मार्क्सवादी शब्दावली में सर्वहारा कहते हैं। हॉब्सबॉम उनकी जिंदगी का बहुत ही, कह सकते हैं, निराशाजनक चित्र खींचती हैं। फैक्ट्रियों में घंटों लंबा काम, बहुत कम मजदूरी, रहने की बहुत खराब स्थितियां, गंदगी, बीमारी, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं।
बहुत मुश्किल जीवन।
हाँ, लेकिन हॉब्सबॉम ये भी बताती हैं कि इसी साझा शोषण, इसी साझा मुश्किल जिंदगी ने उनमें एक नई तरह की चेतना पैदा की, वर्ग चेतना। उन्हें महसूस हुआ कि वो सब एक ही नाव में सवार है।
अच्छा, मतलब एक पहचान बनी उनकी।
हाँ, एक सामूहिक पहचान। और इसी चेतना से शुरुआती मजदूर आंदोलन खड़े हुए, ट्रेड यूनियनें बनी और समाजवादी विचार पैदा हुए जो इस व्यवस्था को बदलना चाहते थे। हॉब्सबॉम मानती हैं कि ये इस युग का शायद सबसे विस्फोटक परिणाम था।
विचारों की दुनिया में भी जाहिर है बड़ी हलचल मची होगी। पारंपरिक धर्म का क्या हुआ और कौन सी नई विचारधाराएं थीं जो इस दौर में सामने आईं?
देखिए, ये जो दोहरी क्रांति थी, औद्योगिक और फ्रांसीसी, इसने पारंपरिक धर्म की सत्ता को सीधी चुनौती दी। एक तरफ प्रबोधन का तर्कवाद था, विज्ञान था, दूसरी तरफ फ्रांसीसी क्रांति ने तो धर्म निरपेक्षता को सीधे सीधे बढ़ावा दिया, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली।
हाँ,
और फिर फैक्ट्रियों वाली जिंदगी, शहरों की भीड़भाड़, इसने भी पारंपरिक चर्च की पकड़ को कमजोर किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि धर्म खत्म हो गया, कुछ धार्मिक आंदोलन भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर समाज में धर्म की जो केंद्रीय भूमिका थी वो कम होने लगी।
तो उसकी जगह किसने ली?
उसकी जगह भरने के लिए नई धर्म निरपेक्ष विचारधाराएं सामने आई। हॉब्सबॉम मुख्य रूप से दो धाराओं की बात करती हैं। एक है उदारवाद, लिबरलिज्म। ये उभरते हुए मध्य वर्ग की विचारधारा थी। इसमें जोर था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, मुक्त बाजार पर, संवैधानिक सरकार पर, नागरिक अधिकारों पर।
और दूसरी
थी समाजवाद, सोशलिज्म। ये पूंजीवाद से पैदा हुए अन्याय, असमानता की प्रतिक्रिया थी। इसमें जोर था सहयोग पर, सामुदायिक स्वामित्व पर, समानता पर। और इनके साथ साथ राष्ट्रवाद भी एक बड़ी ताकत बन रहा था। और इन सबके विरोध में पुरानी व्यवस्था को बचाने के लिए रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म भी मजबूत हुआ।
कमाल है, ये सारी विचारधाराएं तो आज भी हमारी राजनीति का हिस्सा हैं।
बिल्कुल, इनकी आधुनिक शक्ल इसी दौर में गढ़ी गई थी।
कला और विज्ञान पर भी इसका असर पड़ा होगा।
यकीनन, कला में जो सबसे प्रमुख आंदोलन था वो था रोमांटिकवाद। ये थोड़ा जटिल आंदोलन था। एक तरफ तो ये क्रांति के नायकों का व्यक्तिवाद का जश्न मनाता था,
जैसे नेपोलियन,
हाँ, या बायरन जैसे कवि। दूसरी तरफ ये औद्योगिक समाज की जो मशीनी भौतिकवादी दुनिया बन रही थी उससे निराश भी था। ये अक्सर प्रकृति की ओर भागता था या फिर पुराने खोए हुए सरल अतीत की याद में खोया रहता था। इसमें भावनाओं पर, कल्पना पर बहुत जोर था।
और विज्ञान,
विज्ञान ने तो जबरदस्त तरक्की की। उसे उद्योग की व्यावहारिक जरूरतों से भी बढ़ावा मिला, नई तकनीकें चाहिए थीं और उसे तर्कवादी सोच से भी बल मिला। रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान सब में बड़ी बड़ी खोजें हुईं। डार्विन के सिद्धांतों की नींव भी इसी दौर में पड़ी। विज्ञान और प्रगति लगभग एक दूसरे के पर्याय बन गए। इसने बुर्जुआ वर्ग के आत्मविश्वास को और बढ़ाया।
तो ये सारे बदलाव, ये सारे तनाव आखिरकार 1848 की क्रांतियों में जैसे फट पड़े। हॉब्सबॉम इसे कैसे देखते हैं? ये इस युग का अंत था।
हाँ, वो 1848 को इस क्रांति के युग के अंत और एक नए युग, जिसे वो पूंजी का युग, द एज ऑफ कैपिटल कहते हैं, उसकी शुरुआत के रूप में दिखती हैं। 1848 की जो क्रांतियां थीं, जो पूरे महाद्वीप में फैली, वो दिखाते हैं कि दोहरी क्रांति ने जो सवाल खड़े किए थे, जो विरोधाभास पैदा किए थे, वो अब नजरअंदाज नहीं किए जा सकते थे।
जैसे कि
रही थी राष्ट्रवाद की जो इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वो आंदोलन कर रही थीं। हॉब्सबॉम कहती हैं कि साम्यवाद का भूत, जैसा कि मार्क्स और एंगेल्स ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, वो यूरोप पर मंडरा रहा था। तो 1848 एक तरह का क्लाइमेक्स था।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज क्या निकलते हैं? शायद सबसे पहली तो यही दोहरी क्रांति वाली बात
है ना। हाँ, मेरे ख्याल से ये सबसे बुनियादी बात है, ये समझना कि आर्थिक और राजनीतिक बदलाव अलग अलग खांचों में नहीं थे, वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे और एक दूसरे को लगातार प्रभावित कर रहे थे, ताकत दे रहे थे। मैनचेस्टर की फैक्ट्री और पेरिस की सड़कों पर लगे बैरिकेड, ये एक ही बड़ी कहानी के हिस्से थे।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात, ये उदार बुर्जुआ वर्ग की जीत का युग था। इस दौर ने उस मध्य वर्ग को समाज के केंद्र में स्थापित किया, जिसके मूल्य जैसे मेहनत, योग्यता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार आज भी हमारे समाज पर, हमारी सोच पर हावी हैं।
एकदम। लेकिन तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि इस जीत की एक कीमत थी। वो थी नए औद्योगिक मजदूर वर्ग का बनना और उनकी मुश्किलें, उनका शोषण। हॉब्सबॉम हमें बार बार याद दिलाती हैं कि प्रगति या तरक्की कभी भी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। उसके फायदे और नुकसान अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से पड़ते हैं।
हाँ, ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। भारत में भी हम विकास की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन साथ में विस्थापन और बढ़ती असमानता की कहानियां भी होती हैं। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं उसी दौर में खोजी जा सकती हैं।
सही कहा। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी आज की जो मुख्य विचारधाराएं हैं उनका जन्म। चाहे हम राजनीति में लेफ्ट राइट या सेंटर की बात करें, लिबरल या सोशलिस्ट होने का दावा करें या राष्ट्रवाद की दुहाई दें, इन सब की आधुनिक शक्ल, इनके तर्क, इनकी भाषा, वो इसी दौर में बनी।
और पांचवां, राष्ट्र राज्य का विचार। ये आइडिया के लोगों की पहचान उनकी साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी है और उन्हें अपना एक राजनीतिक देश चाहिए। ये आज हमें कितना स्वाभाविक लगता
है ना? लेकिन हॉब्सबॉम दिखाते हैं कि ये विचार भी इसी दौर का एक शक्तिशाली आविष्कार था। पहले दुनिया ऐसी नहीं थी, ये विचार भी बनाया गया था।
हॉब्सबॉम की कुछ पंक्तियां या विचार हैं जो इन बातों को और अच्छे से समझाते हों, कुछ यादगार बातें।
हाँ, कई हैं, जैसे दोहरी क्रांति पर उनका वो कहना जिसका सार ये है, ये दो अलग अलग इतिहास नहीं थे बल्कि एक बड़े ज्वालामुखी के दो मुंह थे जिसके विस्फोट ने दुनिया को बदल दिया। ये उनकी मुख्य थीसिस को बिल्कुल साफ कर देता है।
हाँ, और समाज में जो बदलाव आया उस पर।
फ्रांसीसी क्रांति के बारे में वो कहती हैं सार रूप में, उसका मुख्य परिणाम अभिजात समाज का अंत था, जन्म से मिलने वाली हैसियत खत्म हुई और उसका नया सिद्धांत बना प्रतिभा के लिए खुले करियर। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक गतिशीलता के नियम ही बदल गए।
औद्योगिक क्रांति के बारे में भी जरूर कुछ कहा होगा उसके विरोधाभास पर।
हाँ, वो लिखती हैं, जिसका मतलब है औद्योगिक क्रांति ने शायद वो सबसे बदसूरत दुनिया बनाई जिसमें इंसान कभी रहा था, गंदगी, शोषण, लेकिन इसने इतिहास की सबसे विशाल और शक्तिशाली उत्पादक शक्ति भी पैदा की जो अंततः सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। ये उस तरक्की की दोधारी तलवार को दिखाता है, एक तरफ अपार क्षमता, दूसरी तरफ भयानक मानवीय कीमत।
और ब्रिटेन और फ्रांस की जो अलग अलग भूमिका थी उस पर,
एक जगह वो बहुत अच्छे से कहती हैं, सार ये है, अगर 19वीं सदी की नई अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के असर से बनी तो उसकी राजनीति और विचारधारा मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति से बनी। ब्रिटेन ने दुनिया को रेलवे और फैक्ट्रियों का मॉडल दिया, फ्रांस ने अपनी क्रांतियां की और दुनिया को अपने विचार दिए।
वाह, ये तो कमाल का संक्षेपण है। मतलब ब्रिटेन ने हार्डवेयर दिया, फ्रांस ने सॉफ्टवेयर लिखा।
हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं।
ये सारे विचार सुनने में तो बहुत दिलचस्प हैं, पर क्या ये सिर्फ अकादमिक बातें हैं या आज की दुनिया को समझने में ये वाकई मददगार हो सकते हैं?
नहीं नहीं, ये सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है कई तरीकों से। जैसे आज की राजनीति को ही लीजिए, हम रोज सुनते हैं ये पार्टी उदार है, वो समाजवादी है, वो राष्ट्रवादी है। ये शब्द आए कहाँ से, इनके पीछे का इतिहास क्या है, इनका असली मतलब क्या है, ये समझने में ये किताब बहुत मदद करती है।
और अर्थव्यवस्था के बारे में, आज हम लगातार आर्थिक विकास, GDP की बात करते हैं, दुनिया अमीर और गरीब देशों में बटी हुई है, क्या इसकी जड़ें भी इसी दौर में हैं?
बिल्कुल। हॉब्सबॉम दिखाती हैं कि कैसे औद्योगिक पूंजीवाद पूरी दुनिया पर हावी हो गया, कैसे आर्थिक विकास समाज का मुख्य लक्ष्य बन गया और कैसे एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बनी जिसमें कुछ देश केंद्र में आ गए और बाकी परिधि पर, हाशिए पर धकेल दिए गए। ये पैटर्न कुछ बदलावों के साथ आज भी हमें दिखता है।
सामाजिक स्तर पर भी शायद इसका असर है, जैसे आज हम भारत में आरक्षण, सामाजिक न्याय या फिर वर्ग संघर्ष की बातें सुनते हैं, क्या उसकी भी कोई कड़ी इस दौर से जुड़ती है?
हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है। देखिए, ये वो दौर था जब पहली बार जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उनको बड़े पैमाने पर चुनौती दी गई और समानता का विचार जोर शोर से सामने आया।
हाँ।
अब ये बात अलग है कि वो समानता शुरू में ज्यादातर कानूनी थी और मुख्य रूप से संपत्ति वाले पुरुषों तक सीमित थी, लेकिन इसने वो बहस तो शुरू कर दी ना जो आज तक जारी है कि अवसर की समानता कैसे हो, वास्तविक समानता कैसे हासिल हो, और आधुनिक वर्ग संरचना को समझने के लिए भी ये दौर बहुत जरूरी है। मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग, इनके रिश्ते, इनके संघर्ष सब यहीं से शुरू होते हैं।
तो कुल मिलाकर इस किताब से ये समझ में आता है कि दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी जैसी आज है। इसे बनाया गया है, कुछ खास ऐतिहासिक ताकतों ने इसे ये रूप दिया है।
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि जिन चीजों को हम आज बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल मान लेते हैं, हमारा लोकतंत्र या उसका जो भी रूप है, हमारी अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके, हमारे वैल्यूज, वो सब इतिहास की देन है और खासकर इस क्रांतिकारी दौर की उपज है। ये जानने के बाद हम अपनी दुनिया को ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देख पाते हैं, उसे दिया हुआ मानकर स्वीकार नहीं कर लेते।
और मेरे लिए ये समझना बहुत अहम रहा कि प्रगति या डेवलपमेंट का विचार कितना जटिल है, कितना विरोधाभासी है। इस दौर में विज्ञान, तकनीक, उत्पादन क्षमता में जबरदस्त उछाल आया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी भारी मानवीय और सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। ये संतुलन साधना, विकास किसके लिए और किस कीमत पर, ये आज भी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। होब्सबॉम हमें किसी आसान, एकतरफा जवाब से बचाते हैं।
बिल्कुल सही कहा। ये किताब सिर्फ इतिहास की घटनाएं नहीं बताती, ये हमें इतिहास को समझने का एक तरीका, एक औजार देती है। ये दिखाती है कि कैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक बदलाव एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं और कैसे अतीत हमारे वर्तमान को लगातार चुपचाप आकार देता रहता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारे दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रित फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।